We've been talking about the preacher's doctrine.
हम एक प्रचारक के सिद्धांतों के बारे में हमने वार्तालाप किया है अभी तक.
Specifically, the doctrine of salvation.
और विशेष तौर से हमने उद्धार के सिद्धांत के बारे में बात किया है.
When you preach the gospel,
जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं,
you must be very clear.
तो आपको बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है.
If it's not clear in your mind,
अगर आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है,
it won't be clear in your mouth.
तो आपके मुख में स्पष्ट नहीं होगा.
If it's not clear in your mouth,
अगर आपके मुख में स्पष्ट नहीं है,
it won't be clear in their ear.
तो उनके कानों में स्पष्ट नहीं होगा.
And if it's not clear in their ear,
और अगर उनके कानों में स्पष्ट नहीं है,
they will have a false experience.
तो उनके पास एक झूठा या गलत अनुभव होगा.
Where does it begin?
कहां आरंभ कहां पे हुआ है?
Your mind,
आपके खुद के मस्तिष्क में,
and your mouth,
और आपके खुद के मुख में.
You must live the gospel.
आपको सुसमाचार को जीना
है. You must understand the gospel.
आपको सुसमाचार को समझना है.
You must clearly preach the gospel.
और आपको स्पष्टता के साथ सुसमाचार का प्रचार भी करना है.
The necessity of salvation.
उद्धार की आवश्यकता.
Man's sinful condition.
मनुष्य की पापी स्थिति.
The foundation of salvation.
उद्धार की बुनियाद.
God's unconditional election.
परमेश्वर का बिना किसी शर्त के चुनाव.
The accomplishment of salvation.
उद्धार की उपलब्धियां.
Christ's perfect obedience.
पर मसीह की सिद्ध आज्ञाकारिता.
Now we want to talk about number four.
और अब हम चौथी चीज के बारे में बात करेंगे.
This is very important.
ये बहुत आवश्यक है.
The power of salvation.
सुसमाचार की सामर्थ.
We want to answer these two questions.
हम इन दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं.
If men are dead in sin,
अगर मनुष्य पापों में मरे हुए हैं,
cannot believe,
विश्वास नहीं कर सकते,
cannot repent,
पश्चाताप नहीं कर
सकते,
cannot
come,
नहीं आ सकते,
how can they be saved?
तो फिर कैसे वो बचेंगे?
If they are dead in sin,
अगर वो लोग पाप में मरे हुए हैं,
how can they come?
वो लोग कैसे आ सकते हैं?
Second question.
दूसरा प्रश्न.
Why do some men come and some men do not?
क्यों करके कुछ आदमी लोग तो आते हैं और बाकी लोग नहीं आते हैं?
The power of salvation.
उद्धार की सामर्थ.
And what is the power of salvation?
और उद्धार का सामर्थ क्या है?
Effectual calling.
प्रभावशाली बुलाहट.
And the new birth.
और नया जन्म.
Effectual calling and the new birth.
प्रभावशाली बुलाहट और नया जन्म.
We want to talk about the doctrine of the new birth.
और हम नए जन्म के सिद्धांत के बारे में बात करना मांगते हैं.
This answers our question.
ये हमारे प्रश्न का उत्तर देता है.
If men are dead in sin,
अगर मनुष्य पापों में मरे हुए हैं,
how can they believe?
तो वो कैसे विश्वास कर सकते हैं?
How can they come?
वो कैसे आ सकते हैं?
How can they repent?
कैसे वो पश्चाताप कर सकते हैं?
And this is our answer.
और ये हमारा उत्तर है.
The power of God.
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा.
The calling of God.
परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा.
The new birth from God.
परमेश्वर के द्वारा नए जन्म के द्वारा.
So I want to talk about the doctrine of the new birth.
और हम नए जन्म के सिद्धांत के बारे में बात करना चाहते हैं.
And I want to mention five things.
और मैं पांच बातें का वर्णन करना चाहता
हूं. The necessity of the new birth.
नए जन्म की आवश्यकता.
The nature or definition of the new birth.
नए जन्म का प्रवृत्ति या फिर उसका परिभाषा.
The agent of the new birth, who does it.
और नए जन्म का करने वाला कर्ता, नए जन्म के कर्ता.
The instrument of the new birth, what is used.
और नए जन्म का साधन किसके द्वारा होता है, क्या चीज किस चीज के द्वारा होता है.
And the result of the new birth.
और नए जन्म का परिणाम.
The new birth and conversion.
जो नया जन्म है और हृदय परिवर्तन है.
Are they the same or are they different?
क्या ये दोनों चीजें एक ही चीज हैं या अलग अलग चीजें हैं?
Many preachers do not understand this.
बहुत प्रचारक लोग नहीं समझते नया जन्म और हृदय परिवर्तन.
Relationship of the new birth and conversion.
नया जन्म में और हृदय परिवर्तन में क्या क्या संबंध क्या है दोनों में?
Are they refer to the same thing?
क्या दोनों एक ही बात की बात कर रहे हैं?
Are they different?
के दोनों भिन्न हैं.
If they're different,
अगर ये लोग भिन्न हैं,
what is their relationship?
तो उनका संबंध क्या है एक दूसरे से?
Which comes first?
पहले क्या आता है?
We must understand this.
हमें इस चीज को समझना है.
So we want to talk about the doctrine of the new birth.
तो हम नए जन्म के सिद्धांत के बारे में बात करना मांगते हैं.
Number one,
पहली बात,
the necessity of the new birth.
नए जन्म की आवश्यकता.
Why is the new birth necessary?
नया जन्म क्यों आवश्यक है?
We've already answered that question.
हमने इस प्रश्न का पहले उत्तर दिया है.
Because of man's sinful condition.
क्योंकि मनुष्य की पापी स्थिति की वजह से.
Why is the new birth necessary?
नया जन्म क्यों आवश्यक है?
Because man is dead in sin.
क्योंकि मनुष्य पापों में मरा हुआ है.
He is totally depraved.
वह पूरी तरह से भ्रष्ट है.
And he is morally unable.
और वो नैतिक तौर से असक्षम है.
Now when we talk about the new birth,
और जब हम नए जन्म की बात करते हैं,
what's the first passage that should come to your mind?
और जब हम नए जन्म की बात करते हैं, कौन सा स्थल सबसे पहला स्थल आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए?
You're a preacher.
हाँ?
John 3.
यूहन्ना 3. 3:3. 7.
Look in John.
यूहन्ना में देखिए.
And chapter 3.
और तीसरा अध्याय.
Very famous story.
बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है.
Very important truth here.
बहुत ही जरूरी सत्य है यहाँ पे.
We want to answer this question.
हम इस प्रश्न का उत्तर देना मांगते हैं.
Why is the new birth necessary?
क्यों करके नया जन्म आवश्यक है?
Nicodemus, a man of the Pharisees, a ruler of the Jews, comes to Jesus at night.
फरीसियों में से एक आदमी निकोदिमस और यहूदियों का एक अधिकारी रात में आया परमेश्वर के पास.
Verse 2.
दूसरा पद.
Rabbi, we know you've come from God as a teacher.
हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से एक शिक्षक के रूप में आया है.
No one can do these things.
कोई नहीं कर सकता इन चीजों को.
What does Jesus say?
यीशु ने क्या कहा?
He knows his need.
वो उसकी आवश्यकता जानता है.
He knows his real condition.
वो उसकी सही स्थिति को जानता है.
Nicodemus is being polite.
निकोदिमस यहाँ पे बहुत सही ठीक व्यवहार कर रहा है.
Giving him face.
वो उसको अपना चेहरा दिखा रहा है.
But what does Jesus say?
लेकिन यीशु ने क्या कहा?
He speaks truly to his need.
वो अपनी आवश्यकता के बारे में बात कर रहा है.
Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई पुनः नया जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है.
Now, there's a very important word in Jesus' answer.
और यीशु मसीह के उत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है.
What's that word?
वो शब्द क्या है? यीशु मसीह जो उत्तर दिया, उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है? हाँ?
Do you have that word? Cannot?
Yes.
It's clear.
Mm-hmm.
What is the word?
वो कौन सा शब्द है? नया जन्म तो है, नया जन्म की बात कर रहे हैं. यीशु का राज भी है, जब तक भी है. जब तक क्या?
We've already looked at this word before.
हम लोग पहले भी देख चुके हैं.
It's all over the New Testament.
ये पूरे नए नियम है.
What's the word?
शब्द क्या है?
We're talking about the necessity of the new birth.
हम नए जन्म के आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं.
If you don't pay attention to words, your theology will be wrong.
अगर आप शब्दों पर ध्यान ही देंगे तो आपका आपके धर्म विज्ञान गलत हो जाएगा. हाँ?
नहीं देख सकता.
Can not.
Did you hear that? Say it again.
नहीं देख सकता.
Did you hear that? Cannot.
नहीं कर सकता. नहीं.
Not will not.
ऐसा नहीं कि नहीं करेगा.
Cannot.
नहीं कर सकता.
He cannot enter the kingdom of God.
परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता, प्रवेश नहीं कर सकता.
What is the kingdom of God?
परमेश्वर का राज क्या है?
It is the rule of God.
ये परमेश्वर का राज्य है.
Over the people of God.
लोगों परमेश्वर के लोगों के ऊपर.
In the place of God.
परमेश्वर की जगह में.
How do you enter the kingdom of God?
आप परमेश्वर का जो साम्राज्य है, उसमें कैसे प्रवेश करेंगे?
By faith.
विश्वास के द्वारा.
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
He's not giving a command.
ये यहाँ पे एक आज्ञा नहीं दे रहा यहाँ पे ना.
He's making a statement.
यहाँ पे ये एक वाक्य की बात कर रहा है.
Do you understand what we're saying?
अब आप समझ रहे हैं ना, एक होता है आज्ञा देना, लेकिन एक होता है कोई बात बोलना.
You cannot enter the kingdom of God.
तुम परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर सकते.
Now think with me.
अब मेरे साथ सोचने का प्रयास कीजिए.
What is he saying?
वो क्या कह रहा है?
Before you can enter the kingdom of God.
इससे पहले कि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करो.
What must happen to you?
क्या होना चाहिए तुमको?
Do you see that?
क्या आप देख रहे हैं इस बात को?
Why is the new birth necessary?
नया जन्म क्यों जरूरी है?
Because man cannot enter in.
क्योंकि बिना नए जन्म के मनुष्य परमेश्वर के राज में प्रवेश कर ही नहीं सकता.
How do they enter in?
लेकिन वो उसके राज में कैसे प्रवेश करेंगे?
By faith.
विश्वास के द्वारा.
What does Jesus say?
यीशु मसीह ने क्या कहा?
Before you can believe,
इससे पहले कि तुम विश्वास कर सको,
something must happen to you.
तुम्हारे अंदर कुछ होना चाहिए.
Because if it doesn't happen to you,
क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं होगा,
you cannot enter the kingdom.
तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश ही नहीं कर सकते.
Why is the new birth necessary?
क्यों नया जन्म आवश्यक है, जरूरी है?
Because of man's inability.
क्योंकि मनुष्य की अक्षमता के कारण.
If you don't understand man's condition,
यदि आप मनुष्य की स्थिति को नहीं समझेंगे,
you will have the order of salvation backward.
तो जो जो उद्धार का जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा.
Nicodemus didn't understand.
और निकोदीमस इस बात को नहीं समझ सकता था.
Verse 4.
चौथा पद.
How can a man be born when he's old?
कैसे मनुष्य पैदा हो सकता है जब वृद्ध हो गया है?
Can't enter a second time into his mother's womb and be born, can he?
वो माँ के गर्भ में दोबारा तो नहीं जा सकता है जन्म लेने के लिए, क्या वो कर सकता है ऐसे?
Jesus says it again.
यीशु मसीह ने फिर से कहा उसे.
Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक एक मनुष्य आत्मा और जल से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता.
Now, what is this meaning?
इसका मतलब क्या हुआ?
Water and the Spirit.
आत्मा और जल.
There's three possible interpretations.
तीन संभव इसके व्याख्या.
To the word water, three possible interpretations.
जब पानी शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो तीन अर्थ हो सकते हैं यहाँ पे.
You tell me which one you think is right.
आप मुझे बताइए कि जो तीन बताऊंगा मैं व्याख्या, उनमें से कौन सा सही है?
Water refers to physical birth.
पानी दर्शाता है शारीरिक जन्म को.
Usually when a baby is born, water comes forth.
और जब अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो साथ में पानी भी निकलता है.
Nicodemus is talking about physical birth.
हो सकता है निकोदीमस यहाँ पे शारीरिक जन्म की बात कर रहा हूँ.
Jesus is saying this.
यीशु मसीह ये कह रहे हैं.
You got to be born of water and the Spirit.
तुमको पानी से पैदा होना और आत्मा.
You got to be physically born and spiritually born.
तुमको शारीरिक तौर से पैदा होना है, फिर आत्मिक तौर से पैदा होना.
Now that's a possible interpretation.
ये एक संभावित व्याख्या है.
But probably not the best.
लेकिन हो सकता है शायद सबसे बढ़िया नहीं.
Another interpretation.
दूसरा व्याख्या.
Water represents baptism.
जो पानी जो है बपतिस्मा को प्रतिनिधित्व करता है.
You got to be baptized and then you got to be by water and the Spirit before you enter in.
तुम्हें पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाना है, इससे पहले तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश
करो. Teaching that, he would be saying baptism is necessary for salvation.
लेकिन अगर यीशु मसीह ये सिखा रहे होते तो यीशु मसीह ये सिखा रहे होते कि बपतिस्मा आवश्यक है उद्धार के लिए.
But we know the Bible doesn't teach that.
लेकिन हम जानते हैं बाइबल ये नहीं सिखाती.
So that's probably not a good interpretation.
इसका मतलब कि ये भी एक अच्छा उदाहरण.
Third interpretation.
तीसरा व्याख्या.
Who's he talking to?
किससे बात कर रहे हैं?
Nicodemus.
Nicodemus.
What is Nicodemus?
Nicodemus है कौन?
A Pharisee.
ये फरीसी है.
What kind of Pharisee?
किस तरह का फरीसी?
A main teacher.
और ये मुख्य शिक्षक है.
He knows the Old Testament.
ये पुराने नियम को अच्छी तरह से जानता है.
He's familiar with the promises of God.
ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से बहुत ही अच्छी तरह से.
Look at verse 10.
वाकिफ है.
Jesus, are you a teacher of Israel and you do not understand these things?
दस परमेश्वर ने कहा तुम इज़राइलियों के शिक्षक हो, तुम ये बातें नहीं समझते हो. यीशु मसीह क्या कह रहे हैं?
You don't understand the Old Testament?
तुम पुराने नियम को नहीं समझते हो?
You don't understand what the Old Testament promises?
तुम्हें नहीं मालूम पुराने नियम में प्रतिज्ञाएं क्या हैं?
The promises of the new covenant?
नई वाचा की जो प्रतिज्ञाएं हैं?
Prophesied by the prophets of old.
जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई है.
You're the teacher of Israel and you don't understand this.
तुम इज़राइल के शिक्षक हो और तुम इन बातों को नहीं समझते हो.
What is Jesus probably referring to?
यीशु मसीह किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे?
Several passages in the Old Testament.
पुराने नियम में कई ऐसे स्थल हैं.
Jeremiah 31.
यिर्मयाह 31वां अध्याय.
And especially Ezekiel 36.
और खास तौर पे Ezekiel
Look at this, Ezekiel 36.
Ezekiel 36.
Nicodemus is a teacher of the law.
जो निकोदीमस है वो व्यवस्था का शिक्षक है.
Christ is probably referring to the Old Testament promises.
यहाँ पे मसीह ऐसा संभव है कि पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं को बात कर रहा है.
Chapter 36.
36 अध्याय.
And verse 24.
और 24 पद.
Look at the verse.
यज़ेकेल 36 अध्याय के 24 पद.
I'll take you from the nations, gather in your own land.
मैं तुम्हें
verse 24.
24 पद. मैं तुम्हें जाति जाति देश जैसे इकट्ठा करूंगा, अपने निज देश में पहुंचा दूंगा.
Verse 25.
25 पद
I will sprinkle clean water on you and you will be clean
तब मैं तुम पे शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे
and I will cleanse you from all your idols
मैं तुमको सारी मूर्तियों से शुद्ध करूंगा
moreover I'll give you a new heart and put a new spirit within you
मैं तुमको एक नया हृदय और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा
and I'll remove a heart of stone and give you a heart of flesh
मैं तुम्हें देह में से एक पत्थर का हृदय हटा करके मांस का हृदय दूंगा
verse 27
27वां पद
I will put my spirit within you
मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा
and I will make you to walk in my statutes
और फिर मैं तुमको अपने विधियों पे चलना सिखाऊंगा
this is an old testament promise concerning the new covenant blessing
ये एक पुराने नियम की प्रतिज्ञा है जो कि नई वाचा के लिए है
and what is Ezekiel saying
और यजकेल क्या कह रहा है
God said I will wash you and sprinkle you with clean water
कि मैं तुमको धोऊंगा और शुद्ध पानी से साफ करूंगा
and I will put my spirit within you
और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा
Jesus says to Nicodemus
यीशु मसीह निकोदीमा से कहते हैं
you're a teacher of Israel and you don't know these things
तुम जो है शिक्षक हो इज़राइल के और तुम्हें ये बातें नहीं मालूम है
the prophets speak of these things
जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो लोग इस बारे में बात करते हैं
he's making reference to this old testament promise
ये पुराने नियम के जो भविष्यवाणी है उसके बारे में बात कर रहा है
you must be born look at verse 5 of water and the spirit John chapter 3
और यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय उसके पांचवे पद में फिर से देखिए वो क्या कह रहा है तुम्हें पानी से और आत्मा से बपतिस्मा लेने की जरूरत है
look at the verse
यहां पे पद देखिए
unless you're born of water and spirit you cannot enter the kingdom of god
जब तक तुम पानी और आत्मा से जन्म ना लो तब तक तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते
there's our word again
यहां पे वो शब्द आया
he's not giving a command
यहां पे ये आज्ञा नहीं दे रहा
he's not saying you must cause yourself to be born again
वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपने आप को पैदा करना है
he's saying something must happen to you
वो कह रहा कि तुमको कुछ होना है
You cannot enter the kingdom of God.
तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते.
You cannot see the kingdom of God.
तुम परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकते.
How do you see the kingdom of God?
तुम परमेश्वर के राज को कैसे देखते हो?
With the eye of faith.
विश्वास की आंखों के द्वारा.
How do you enter the kingdom of God?
तुम परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश करोगे?
With two steps.
दो कदमों के द्वारा.
Repentance.
पश्चाताप.
And faith.
और विश्वास.
That is conversion.
यही हृदय परिवर्तन है.
What does Jesus say?
यीशु मसीह ये क्या कह रहे हैं?
You cannot see the kingdom.
तुम परमेश्वर के राज को नहीं देख सकते.
You cannot enter the kingdom.
तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश भी नहीं कर सकते.
Before you see it.
इससे पहले कि तुम देखो.
Before you enter it.
इससे पहले कि तुम प्रवेश करो.
Something must happen to you.
तुम्हारे अंदर कुछ होना चाहिए.
Why?
क्यों?
Because you can't see.
क्योंकि तुम देख नहीं सकते.
You can't walk.
तुम चल नहीं सकते.
You can't repent.
तुम पश्चाताप नहीं कर सकते.
You can't believe.
तुम विश्वास नहीं कर सकते.
Something must first happen to you.
इससे पहले तुम्हारे अंदर कुछ होना है पहले.
You must be born again.
तुम्हें नया जन्म पाना है.
You understand what Jesus is saying?
अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है?
Most preachers.
बहुत सारे प्रचारक.
Have it backward.
ने उल्टा कर ले इसको
You repent,
तुम पश्चाताप करो
you believe,
विश्वास करो
then you're born again.
फिर तुम्हारा नया जन्म होगा
That's not what Jesus is saying.
यीशु मसीह ये नहीं कह रहे
Before you repent,
इससे पहले तुम पश्चाताप करो
Before you believe,
इससे पहले तुम विश्वास करो
Before you enter,
इससे पहले तुम प्रवेश करो
Before you see,
इससे पहले तुम देखो
You must be born again.
तुम्हारा नया जन्म होना जरूरी है
Why?
क्यों
Because you're dead.
क्योंकि तुम मरे हुए हो
Why is the new birth necessary?
नया जन्म क्यों जरूरी है?
Because of man's sinful condition.
क्योंकि मनुष्य की पापी दशा की वजह से.
Now burn this word into your head.
इस चीज को अपने मस्तिष्क में दाग लीजिए.
If you don't understand this word,
अगर आप इस शब्द को नहीं समझते,
your doctrine of man will be wrong.
आपका जो मनुष्य का जो सिद्धांत है वो गलत होगा.
And if your doctrine of man is wrong,
अगर आपका मनुष्य का सिद्धांत गलत होगा,
your doctrine of salvation is wrong.
तो आपका उद्धार का जो सिद्धांत वो गलत होगा.
Cannot.
नहीं कर सकता
cannot
नहीं कर सकता
cannot see
सक्षम नहीं है देखने के
cannot enter
नहीं प्रवेश कर सकता
cannot repent
नहीं पश्चाताप कर सकता
cannot believe
नहीं विश्वास कर सकता
something must first happen to you
इससे पहले ये सब करे कुछ होना है आपके अंदर
why is the new birth necessary
नया जन्म क्यों जरूरी है
because of man's inability
क्योंकि मनुष्य की अक्षमता की वजह से वो नहीं कर सकता
Are you thinking with me?
अब हमारी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं
Do you understand this?
ये बात समझ में आए कि नहीं आए, स्पष्ट है कि नहीं है?
I go all over America.
मैं हर जगह जाता रहता हूँ.
I go all over China.
अमेरिका में, चीन में.
99% of the preachers.
99% प्रचारक.
They have it backwards.
ने इसको उल्टा कर दिया है.
Because they do not understand man's condition.
क्योंकि वो मनुष्य की स्थिति को नहीं समझते हैं.
Why is the new birth necessary?
नया जन्म क्यों जरूरी है?
Because he cannot see.
क्योंकि वो देख नहीं सकता है.
He cannot enter.
वो प्रवेश नहीं कर सकता है.
He cannot come.
वो आ नहीं सकता है.
He cannot believe.
वो विश्वास नहीं कर सकता है.
How did a dead man come?
मरा हुआ आदमी कैसे आएगा?
They must be born again.
उन्हें नया जन्म प्राप्त करना है.
Before they can come,
इससे पहले कि वो आए,
something must happen to them.
उनके अंदर कुछ होना है.
That is why the new birth is necessary.
इसीलिए नया जन्म आवश्यक है.
Number two.
दूसरी बात.
What is the nature or the definition of?
I think they want to ask something.
Yes. Very difficult to explain. Ask, give him the question. Tell
him. भैया कह रहे हैं ना कि ये जो पादना पानी से जन्म लेना, आत्मा जन्म लेना, इसमें कई बार लोग बहुत निश्चयता के साथ इसकी बात करते हैं, लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि इसका मतलब क्या है, आत्मा से जन्म लेना, पानी से जन्म लेना, है ना? तो कैसे उनको हम समझाएंगे इस बात को?
The problem is people are not instructed.
दिक्कत यह है कि लोगों को शिक्षा नहीं दी गई है.
And they don't know how to think biblically.
और उनको बाइबल के अनुसार सोचना नहीं आता है.
And they're not thinking in the context.
और वो बाइबल के संदर्भ के अनुसार नहीं सोच रहे.
They're not thinking this way.
वो इस तरह से नहीं सोच रहे हैं.
Who's Jesus talking to?
यीशु मसीह किससे बात कर रहे
हैं? He's talking to Nicodemus.
वो निकोदीमस से बात कर
रहे हैं. Who is Nicodemus?
निकोदीमस कौन है?
He's a great teacher in Israel.
वो इज़राइल देश में एक बड़ा प्रचारक है.
What should Nicodemus know?
अच्छा, निकोदीमस को क्या मालूम होना चाहिए था, या वो क्या जानता है?
He should know the Old Testament.
उसको पुराना नियम अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ना?
But they can't make that connection.
लेकिन लोग इस कनेक्शन, इस संबंध को नहीं देख पा रहे.
So your responsibility.
तो आपकी जिम्मेदारी
is to tell them the different parts possible interpretation.
तो पहले आप उनको जो तीन जो अलग अलग व्याख्या है, संभावित व्याख्या, उनको बताइए.
And explain them clearly.
और उनको साफ तरीके से समझाइए.
And then try to show them from the Word of God. Slowly show them what you believe Jesus is teaching.
और फिर धीरे से उनको समझाने की कोशिश करिए कि आप क्या समझते हैं यीशु मसीह बता रहा है यहाँ पे.
This is very difficult.
मुश्किल है ये.
Some people say he's talking about being physically born.
कुछ लोग बात कर रहे हैं शारीरिक रीति से जन्म लेने की बात.
Other people say no, no, he's talking about water baptism.
लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो पानी के बपतिस्मे की बात हो रही है.
And there are many people in India that teach those things.
और बहुत सारे लोग हैं भारत जो इसकी बात करते हैं.
But if you understand biblical theology,
अगर आपको याद है हम लोगों ने बात की थी बाइबल पर आधारित धर्म विज्ञान.
You understand Jesus is not speaking to the Western world or to the Indian world here.
वो आप समझ जाएं कि यीशु मसीह पाश्चात्य सभ्यता से या भारतीय लोगों से नहीं बात कर रहे हैं.
He's speaking to the Jewish man.
वो एक यहूदी व्यक्ति से बात कर रहे हैं.
A Jewish teacher.
एक यहूदी शिक्षक से.
Who should know the law.
जिसको व्यवस्था का अच्छा ज्ञान होना चाहिए.
And he says, you don't know the law.
और यीशु मसीह से कह रहे, तुम तो व्यवस्था जानते ही नहीं.
The law talks about this.
व्यवस्था इसके बारे में बात कर रहा है.
The prophets prophesy about this.
भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में भविष्यवाणी की है.
And we'll see in a moment that Paul makes reference to this as well.
और फिर थोड़ी देर में हम देखेंगे पौलुस भी इस बात के बारे में वर्णन करता है.
So how do you teach people?
तो लोगों को आप कैसे सिखाएंगे इस बात को?
With patience.
संयम के साथ.
With the word of God.
परमेश्वर के वचन से.
Line upon line.
एक रेखा के बाद एक रेखा, एक लाइन के बाद एक लाइन.
Try to explain the different possibilities.
और विभिन्न संभावनाओं को आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए.
Tell what you believe is true.
और फिर आप उनको बताइए जो आप विश्वास करते हैं जो सही है.
This is your responsibility.
ये आपकी जिम्मेदारी है.
This is very difficult.
ये बहुत मुश्किल है.
But it takes patience, patience, patience.
लेकिन इसके लिए आपको संयम चाहिए, संयम चाहिए, संयम चाहिए.
I've gone to many places in China and I've taught something.
मैं कई जगह गया हूँ चीन देश में, मैंने कुछ सिखाया है.
And I've taught about the relationship of the new birth and conversion.
और मैंने नए जन्म और हृदय परिवर्तन के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बातचीत
की. And I've worked very hard to teach it.
और फिर मैंने बहुत मेहनत किया उसको सिखाने के लिए.
I've repeated many times.
मैंने कई बार उसको बोला है.
I used many verses.
मैंने कई पद इस्तेमाल किए.
I explained it this way.
मैंने इस तरह से बताया.
I explained it this way.
इस तरह से समझाया.
I explained it this way.
और दूसरी तरह से समझाया.
I opened it up.
और मैंने बाइबल खोला.
I take out each part.
और खोल करके एक-एक हिस्सा सिखाया.
I put it back together.
फिर से उन सारे हिस्सों को वापस.
Do you understand?
फिर मैंने उनसे कहा क्या समझे?
Everyone says yes.
सबने कहा हाँ.
I come back 3 months later.
और 3 महीने बाद वे वापस आता.
I ask the question.
मैंने प्रश्न पूछा.
What's the relationship of regeneration and conversion?
नए जन्म में और हृदय परिवर्तन में फर्क क्या है? संबंध क्या है?
They don't understand it.
समझ नहीं पाते हैं.
Just because you tell people something the first time and say yes, yes, doesn't mean they understand.
केवल इसलिए क्योंकि आपने किसी को पहली बार कुछ बात बता दी और उन्होंने कहा हाँ हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ गए.
In India, it's going to take years.
भारत में सालों साल लगेंगे उसको.
And you've got to continue to teach the truth.
और आपको सत्य को सिखाते रहना है.
Again and again.
बार से फिर बार बार.
Then the light begins to turn on.
फिर धीरे धीरे फिर जो अंदर दिमाग की बत्ती जलने लगती है.
And the eyes begin to slowly open.
फिर आंख जो धीरे धीरे खुलने लगती है.
Why is the new birth necessary?
नया जन्म क्यों आवश्यक है?
Because of man's sinful condition.
क्योंकि आदमी की पाप में स्थिति की वजह से.
Keep teaching.
सिखाते रहिए.
Keep praying.
प्रार्थना करते रहिए.
Be patient.
संयम रहिए.
Use the word of God.
परमेश्वर के वचन इस्तेमाल कीजिए.
God may open their eyes.
परमेश्वर उनकी आंखें खोल सकता है.
Number two.
दूसरी बात.
Yes, one other question.
जोर से बोलिए. हाँ हाँ बोलिए तो.
You know, you are talking about, he just wants to know, you're addressing the same issue exactly. And so he's saying, you said that repentance and is different, is comes after new birth. How is that possible? See,
we'll explain it in just a moment.
हम अभी बात करेंगे उसके बारे में. अच्छा प्रश्न है. Very good. अभी हम बात करेंगे इसके बारे में. हम कर रहे हैं उसी के बारे में बात करते हैं. ध्यान से सुनते रहिए. नया जन्म पहले आता है, पश्चाताप बाद में आता है. हम अक्सर क्या सोचते हैं कि क्या पहले आता है? पश्चाताप पहले आता है, उसके बाद नया. हम ये सोचते हैं ना. लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की स्थिति क्या है? अगर आदमी मरा हुआ है तो वो पश्चाताप कैसे करेगा? जो आदमी मरा हुआ पश्चाताप कैसे करेगा? इससे पहले वो पश्चाताप करे उसके अंदर क्या होना है? वो नया जन्म कौन देगा उसको? वो नया जन्म कौन देगा? हम देंगे? वो प्रार्थना कर सकता है नया जन्म के लिए? कौन देगा नया जन्म? वो नया जन्म कहां से आएगा उसके अंदर? कहां से आएगा वो नया जन्म? परमेश्वर. क्यों नया जन्म जरूरत है? क्योंकि उसकी स्थिति क्या है आदमी की? पापी है और मरा हुआ है. मतलब वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, वो बाइबल की बातों को नहीं समझ सकता. तो आप उसके सामने दिन भर बैठ करके बाइबल पढ़ाइए, दिन भर प्रचार करिए, उसके समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा. आप पाप समझा सकते हैं, आप यीशु मसीह के बारे में समझा सकते हैं, उसके समझ में आएगा? नहीं समझ आएगा. क्यों? कैसे मरा हुआ है? आत्मिक तौर से उसको क्या होना है? नया जन्म मतलब उसको जिंदा होना है. जब वो परमेश्वर की आत्मा उसको जिंदा करेगा तब वो क्या करेगा? अरे मुझे क्या करना है? अब समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा लेकिन समझ में आ रहा है ना. पहले क्या होना है? नया जन्म. उसके बाद तो अब सुनिए.
Amen.
Amen.
Those are very good questions.
अच्छी प्रश्न है आप जो पूछ रहे हैं.
As we continue this, we'll answer them at the end. Maybe some of your questions will be answered.
और जो हम चलते आएंगे तो हो सकता है आपके कुछ और प्रश्नों को हम उत्तर देते चले आएंगे.
The nature of regeneration.
नए जन्म की जो प्रवृत्ति है या जो उसका जो रूप है.
Look in the book of Ephesians.
इफिसियों की पत्री में देख लीजिए.
This is very, very important to understand.
और ये बहुत जरूरी कि आप समझ जाएं.
Chapter 2.
और दूसरा अध्याय.
Verse 5.
पांचवा पद.
You were dead in your transgressions.
आप अपने अपराधों में क्या हुए थे
and you were made alive together with Christ.
मरे हुए थे और परमेश्वर ने मसीह में आपको जीवित किया.
How does Paul describe the new birth?
नए जन्म के बारे में पौलुस कैसे उसका वर्णन कर रहा है?
He says it's being made alive from the dead.
पौलुस कह रहा है कि जब हम मरे हुए थे मरे हुए में से हमको जी उठा दिया गया.
Look in the book of Titus.
और तीतुस के पत्र में देखिए.
Chapter 3.
तीसरा अध्याय.
Now Paul was a Jew.
पौलुस जो है एक यहूदी आदमी था.
When he was a Pharisee.
वो एक फरीसी था.
He was a teacher of the law.
ये व्यवस्था का शिक्षक था.
Before he was converted, he was like Nicodemus.
इससे पहले उसका हृदय परिवर्तन हो वो किसके समान था? वो निकोदीमस के समान था.
He didn't understand the truth.
वो सत्य को नहीं समझ सकता था.
But he was wonderfully converted.
लेकिन वो अद्भुत तरीके से उसका हृदय परिवर्तन
था. And his eyes were open.
और उसकी आंखें खुल गईं.
And he understood the Old Testament.
और वो पुराने नियम को समझ गया.
Titus chapter 3.
तीतुस उसका तीसरा अध्याय.
And verse 5.
और पांचवा पद.
Look at the verse yourself.
अच्छा तीतुस उसका तीसरा अध्याय उसका पांचवा पद को अपने आप देख लिए.
He saved us.
उसने हमें बचाया.
We didn't save ourselves.
हमने अपने आप उद्धार नहीं
किया. Not on the basis of deeds we've done in righteousness.
हमारे धर्म के कार्यों के आधार पर नहीं.
But according to his mercy.
लेकिन अपनी दया के अनुसार.
Look at the last phrase.
और उसके बाद जो आखिरी वाक्यांश है उसको देखिए.
What does he say?
क्या कह रहा है वहां पे?
By the washing of regeneration, renewal of the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा द्वारा नए जन्म और नए बनाए जाने के स्नान के द्वारा.
Now what verse in the Old Testament should that remind you of?
अच्छा जब आप ये पद पढ़ेंगे तो आपको पुराने नियम के कौन से पद एकदम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए? हाँ, पुराने नियम का कौन सा पद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब आप इस पद को पढ़ेंगे?
We just read it.
हाँ, यजकेल 36 का 24 अभी हमने पढ़ा.
I will wash and sprinkle you with clean water.
मैं तुमको धोऊंगा और साफ पानी से क्या करूंगा?
I will put my spirit within you.
मैं अपनी आत्मा क्या करूंगा? तुम्हारे भीतर डालूंगा, तुम्हारे अंदर डालूंगा.
What does Paul say?
पौलुस क्या कह रहा है यहाँ?
The washing of the new birth.
नए जन्म के धोए जाने के द्वारा.
And the renewal of the Holy Spirit.
और नई पवित्र आत्मा के नए देने के द्वारा.
Paul probably making reference to that passage.
और हो सकता है क्योंकि पौलुस पुराने नियम को अच्छी तरह जानता है इसलिए पुराने नियम के उन पद के बारे में बात कर रहा है.
How does he describe the new birth?
नए जन्म का वर्णन कैसे कर रहा है यहाँ पे?
A washing.
धोने के द्वारा.
A renewal.
नए बनाए जाने के द्वारा.
A giving of life.
नए जीवन देने के द्वारा.
The impartation of life to a dead soul.
जो मृतक प्राण है उसको नया जीवन प्रदान किए जाने के द्वारा.
Look in the book of James.
और उसके याकूब के पत्र में देखिए.
We're trying to define the new birth.
हम नए जन्म को समझाने का प्रयास कर रहे हैं.
If you don't understand this,
अगर आप इस बात को नहीं समझते
Your theology will be wrong.
तो आपका जो बाइबल समझने का चीजें वो गलत
होगा. If your theology is wrong,
अगर आपका धर्म विज्ञान गलत होगा,
your gospel will be wrong.
तो आपका सुसमाचार गलत होगा.
This is very important.
ये बहुत जरूरी है.
James chapter 1.
याकूब उसका पहला अध्याय.
Verse 18.
18 पद.
In the exercise of his will, he brought us forth by the word of truth.
उसने अपनी इच्छा से ही सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया.
That we might be the First fruits among his creatures.
ताकि हम उसके सृजे गए प्राणियों में मानव प्रथम फल हों.
How does James describe the new birth?
और याकूब कैसे इसका वर्णन करता है नए जन्म का?
He calls it a being brought forth, brought out.
वो उसे कह रहा है कि हम सामने लेकर के आए गए, हमें जन्म दिया गया है.
Not by our will.
किसकी इच्छा के द्वारा? हमारी नहीं इच्छा के द्वारा.
But by the exercise of his will.
लेकिन परमेश्वर की इच्छा के द्वारा.
This is the nature of the new birth.
ये नए जन्म की प्रकृति है.
Look in 1 Peter.
पहले पत्रस में देखिए.
In chapter 1.
पहले अध्याय में.
Verse 23.
उसका 23वां पद.
Look at the verse.
यहाँ पे इस पद को देखिए. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23वां पद इसको ध्यान से देखिए.
You have been born again.
तुम्हें नया जन्म हुआ है.
Not of seed perishable but imperishable.
और विनाशी नहीं किंतु अविनाशी बीज से.
By the living and abiding word of God.
परमेश्वर के जीवित और अटल वचन के द्वारा.
Jesus.
यीशु.
Paul.
पौलुस.
John,
Yahunna,
James,
Yaakov,
Peter,
Patras.
They describe the new birth.
वो नए जन्म का वर्णन कैसे करते हैं?
It comes from above, Jesus said.
वो ऊपर से आता है, यीशु मसीह ने कहा.
It's bringing to life a dead soul.
वो एक मृतक प्राण को नया जीवन देता है.
It is a washing.
और वो एक धोने का कार्य है.
It is a renewal.
और वो एक नया करने का कार्य है.
It's like a baby being born.
ये एक बालक के जन्म लेने के समान है.
That's the nature of the new birth.
यही है नए जन्म की प्रवृत्ति या स्वभाव.
Number three.
तीसरी बात.
Who is the agent? Who does this?
ये कौन इसका कर्ता कौन है? कौन है इसका करने वाला? किसके द्वारा हो रहा है?
Titus chapter 3.
तीतुस उसका तीसरा अध्याय.
We just looked at it.
हमने अभी उसको देखा था.
Who does this work?
कौन करता है इस काम को?
What person of the Trinity?
त्रिएकता का कौन सा जन है जो इसको करता है?
The Holy Spirit.
पवित्र आत्मा.
The Father chooses.
पिता चुनता है.
The Son redeems.
और पुत्र छुड़ाता है.
The Spirit gives life.
आत्मा जीवन देता है.
Titus chapter 3.
तीतुस उसका तीसरा अध्याय.
What does Paul say?
पौलुस क्या कहता है?
The washing of regenerate, the renewal of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के नए कर दिए जाने के द्वारा.
Do you see that?
क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे?
Who does this work?
कौन करता है ये काम?
The Holy Spirit.
पवित्र आत्मा.
John 3.
यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय.
Look at John 3 again.
अब फिर से हमारे साथ वापस आइए यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में.
We're trying to answer this question.
हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे
हैं. Who does this work?
कौन करता है इस काम को?
Jesus is teaching.
यीशु मसीह सिखा रहे हैं इस बात को.
And what does he say?
यीशु मसीह क्या कहते हैं पांचवें पद में?
Verse 6.
छठे पद में.
That which is born of flesh is flesh.
जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है.
That which is born of the spirit is spirit.
और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है.
Who does this work?
कौन करता है ये काम?
The Holy Spirit.
पवित्र आत्मा.
Verse 8.
आठवां पद.
The wind blows where it will.
हवा जहां चाहती वहां चलती है.
You hear the sound?
आप उसकी आवाज सुनते हैं.
You don't know where it comes from, where it's going.
आपको नहीं मालूम कहां से आती है कहां जा रही है.
So is everyone born of the Spirit.
और जैसे वही सब लोग हैं जो लोग आत्मा से जन्मे हैं.
You hear the wind?
आप हवा को सुनते हैं?
You see the trees move?
आप देखते हैं कि पेड़ हिल रहे हैं?
But you can't see it.
लेकिन आप हवा को नहीं देख सकते.
It's secret.
वो गुप्त है.
It's hidden.
वो छिपा हुआ है.
It's supernatural.
वो अप्रकट है.
It's a work of God.
परमेश्वर का कार्य है.
It's the wind of the Spirit.
ये आत्मा की हवा है.
Who does it?
कौन करता है?
Not you.
आप नहीं.
The Spirit.
आत्मा.
Number four.
चौथी बात.
What instrument does he use?
किस चीज को इस्तेमाल करता है वो? किस साधन को इस्तेमाल करता है वो?
What does he use?
किस साधन को इस्तेमाल करता है इस ये करने के लिए नया जन्म देने के लिए?
You're holding it in your hand.
आप उसको अपने हाथों में पकड़े हुए हैं.
He uses the word of God.
परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है.
Why is the new birth necessary?
क्यों नया जन्म आवश्यक है?
They cannot see or enter the kingdom of God.
वो ना देख सकते हैं ना परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं.
What is the new birth?
नया जन्म क्या है?
It's the giving of life.
नया जन्म जीवन को देना है, प्रदान करना है.
Who does it?
कौन प्रदान करता है जीवन को?
The Holy Spirit.
पवित्र आत्मा.
What does he use?
और क्या क्या चीज किस उपकरण का वो उपयोग करता है?
He uses the word of God.
वो परमेश्वर के वचन को उपयोग करता है.
First Peter.
पहला पत्रस.
We just looked at it.
अभी हमने देखा उसको.
Chapter 1.
पहला अध्याय.
Now I know this is very basic.
मुझे मालूम है ये बहुत ही बुनियादी बातें हैं.
But very important.
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है.
If you're wrong on this point,
अगर आप इस विषय पे गलत होंगे,
your teaching will be wrong.
तो आपकी शिक्षा गलत होगी.
What is the instrument?
इसका यहाँ पे उपकरण क्या है?
Chapter 1.
पहला अध्याय.
Verse 23.
23 पद.
You've been born again.
तुम्हारा नया जन्म हुआ है.
Not of seed perishable, imperishable, but imperishable.
नाशवान बीज से नहीं लेकिन अविनाशी बीज.
And what is that seed?
और वो बीज क्या है?
The living and enduring word of God.
अर्थात परमेश्वर के जीवित और अटल वचन के द्वारा.
What does Jesus say?
यीशु मसीह क्या कहते हैं?
John 6.
ये यूहन्ना छठा
अध्याय. The flesh profits nothing.
शरीर को देह को तो कोई लाभ नहीं होता.
It is the spirit that gives life.
ये आत्मा है जो जीवन देता है.
The words I have spoken are spirit and life.
जो शब्द मैंने बोले हैं वो आत्मा है और जीवन.
What does Paul say?
पौलुस क्या कहता है?
Romans 10.
रोमियों का 10वां अध्याय.
Faith comes by hearing.
विश्वास सुनने के द्वारा उत्पन्न होता है.
And hearing by the word of Christ.
और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा.
How is a man born again?
एक जन एक मनुष्य कैसे नया जन्म पाता है?
The word is preached.
वचन का प्रचार किया जाता है.
It's like a man scattering seed.
ये उस व्यक्ति के समान है जो बीज फैला रहा है.
It falls on different hearts.
वो अलग-अलग हृदयों पे गिरता है.
Some seed does not come to life.
और कुछ बीज हैं जो मर जाते हैं.
Some seed does does come to life.
और कुछ बीज हैं जो जीवन पाते हैं.
You plant the seed in the ground.
और हम बीज को भूमि में गाड़ते हैं.
The rain falls.
पानी बरसता है.
The sun shines.
और सूरज चमकता है.
And what happens to that seed?
और फिर क्या होता है उस बीज को?
A miracle.
एक आश्चर्यकर्म होता है.
Life.
जीवन.
And a little twig comes out.
और एक छोटी सी डंठल निकल आती है.
The seed is the word of God.
जो परमेश्वर का वचन है वही बीज है.
It is put in the hearts through preaching.
और प्रचार के द्वारा लोगों के हृदयों में डाला जाता है.
Some men do not believe.
कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं.
But some men do believe.
लेकिन थोड़े लोग विश्वास जरूर करते हैं.
Why do they believe?
क्यों वो लोग विश्वास करते हैं?
Because God sends the rain.
क्योंकि परमेश्वर बारिश को भेजता है.
God sends the sun.
परमेश्वर सूरज को भेजता है.
And what is the sun and the rain?
और सूरज और पानी क्या
है? It's the power of the Holy Spirit.
वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है.
And he comes and touches that seed.
और फिर वो आता है और उस बीज को छूता है.
लाइफ.
जीवन.
नॉट फ्रॉम मैन.
मनुष्य की ओर से नहीं.
नॉट विद इन मैन.
मनुष्य के अंदर से नहीं.
फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मैन.
मनुष्य के बाहर से.
इनटू मैन.
मनुष्य के अंदर फिर जाता है.
दैट इज द न्यू बर्थ.
ये है नया जीवन.
Now listen carefully.
अब इस बात को ध्यान से सुनिए.
What is the relationship of the new birth and repentance and faith?
अच्छा अब इस बात को ध्यान से सुनिए. नया जन्म और विश्वास में पश्चाताप का क्या संबंध है? नया जन्म और पश्चाताप.
Man is dead in sin.
क्या संबंध है? मनुष्य अपने पाप में मरा.
He's blind.
वो अंधा है.
He's deaf.
वो बहरा है.
Cannot believe.
नहीं विश्वास कर सकता.
Cannot repent.
नहीं पश्चाताप कर सकता.
Cannot come.
नहीं आ सकता.
He has no power.
उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं.
His will is bound.
उसकी जो इच्छा है वो बंधी है.
He's spiritually dead.
आत्मिक तौर से मरा हुआ.
You preach the gospel.
आप समाचार प्रचार
करिए. You tell them to come.
आप उनसे कहिए कि आओ.
They don't come.
वो नहीं आते.
You tell them to repent.
आप उनसे कहते पश्चाताप
करो. They don't repent.
वो नहीं पश्चाताप करते.
You tell them to believe.
आप उनसे कहते विश्वास
करो. They don't believe.
वो नहीं विश्वास करते.
They cannot believe.
वो नहीं कर सकते.
Something must happen.
कुछ होना है उनको पहले.
Life.
जीवन.
Out of heaven.
स्वर्ग से.
Into a dead heart.
एक मृतक हृदय में.
And when a man is born again.
और जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है.
God gives him two gifts.
और परमेश्वर उसको दो दान देता है.
What are the gifts?
वो दान क्या है?
Repentance.
पश्चाताप.
And faith.
और विश्वास.
It's not from within man.
हमारे मनुष्य के अंदर से नहीं.
It's from outside.
लेकिन वो बाहर से है.
God gives him the gift of repentance.
परमेश्वर उसको पश्चाताप का दान
God
देता है.
God gives him the gift of faith.
परमेश्वर उसको विश्वास का दान देता है.
And the first thing he does.
और सबसे पहली चीज फिर वो मनुष्य करता है.
After he's born again.
जब उसका जन्म हो जाता है उसके बाद.
He repents.
वो पश्चाताप करता है.
And he believes.
और वो विश्वास करता है.
Now listen carefully.
अब आप इस बात को समझ लीजिए ध्यान से.
Lazarus is in the tomb.
लाजर है वो अपनी कब्र में पड़ा हुआ है.
He's dead.
वो मरा हुआ है.
He's been dead 4 days.
चार दिन से मरा पड़ा है.
He stinks.
वो उसमें से बदबू आ रही है.
Can't see.
देख नहीं सकता है.
Can't hear.
सुन नहीं सकता है.
Can't walk.
नहीं चल सकता.
Can't feel.
नहीं महसूस कर सकता है.
Can't come.
नहीं आ सकता है.
Jesus comes to the grave.
यीशु मसीह कब्र पे आते हैं.
And he says this.
यीशु मसीह ये कहते हैं.
An hour is coming and now is.
एक समय आ रहा है और वो अब समय है.
When the dead will hear the voice of the Son of God.
जब मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे.
And they will live.
और वो लोग जी उठेंगे.
And he comes to the tomb.
और फिर वो कब्र पे आता है.
And he says, roll away the stone.
वो कहता है पत्थर को हटा दो.
What does Martha say?
और मार्था क्या कहती है?
Don't do that.
अरे ऐसा मत करो.
He's dead.
वो मरा हुआ
है. He stinks.
उसमें बदबू आ रही
है. Jesus said, roll away the tomb.
यीशु मसीह कहता है पत्थर हटा दो.
Lifted up his eyes to heaven.
उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई.
He said, "Father, I thank you that you hear me."
उसने कहा, पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मुझे सुनते हैं.
Then what does he say?
और फिर उसके बाद वो क्या कहता है?
Lazarus, come forth.
बाहर आ जाओ.
Now listen carefully.
अब ध्यान से सुनिए.
Lazarus is dead.
लाजर तो मरा हुआ.
Can't hear.
सुन नहीं सकता.
Can't feel.
महसूस नहीं कर सकता.
Can't walk.
नहीं चल सकता.
Can't come.
नहीं आ सकता.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
He's commanding Lazarus to do something he cannot do.
वो लाजर से ऐसी बात करने की आज्ञा दे रहा है जिसका वो प्रत्युत्तर नहीं कर सकता.
Did you hear that?
क्या आपने सुना इस बात को?
He tells him to come.
वो उसे कहता है कि तुम बाहर
आओ. He cannot come.
लेकिन वो आ नहीं सकता.
When you preach to lost men,
जब आप खोए हुए लोगों से प्रचार करते हो,
you tell them to come.
तो आप उसे कहते कि तुम आओ.
They cannot come.
लेकिन वो नहीं आ सकते.
You tell them to repent.
आप उनसे कहते पश्चाताप.
They cannot repent.
नहीं पश्चाताप कर सकते.
You tell them to believe.
आप उनसे कहते विश्वास.
They cannot believe.
वो नहीं विश्वास कर सकते.
You're telling them to do something they cannot do.
आप उनसे ऐसी चीज कह रहे करने के लिए जो वो नहीं कर सकते.
But with the voice.
लेकिन आवाज के द्वारा.
Lazarus.
Lazarus.
Power. secret power,
gupt samarth,
supernatural power.
Ye aprakritik samarth.
No one sees it.
Koi nahi dekh sakta is samarth
ko. Comes into that tomb.
Aur us kabar mein aati hai wo samarth.
And a dead man.
Aur ek mara hua aadmi.
Awakes.
Jaag jata hai.
And what's the first thing he does?
Aur sabse pehli cheez kya karta hai?
He gets up.
Wo khada hota hai.
And he comes to Christ.
Aur wo yeshu ke paas aata hai.
Now that's a picture.
Ye ek chitra hai.
Because Jesus said this.
Kyunki yeshu ne ye kaha.
An hour is coming when, and now is.
Ek samay aa raha hai aur wo samay ab hai.
When the dead will hear the voice of the Son of God.
Jo mare hue log hai wo parmeshwar ke putra ki awaaz ko sunenge.
The spiritually dead.
Jo aatmik riti se mare hue.
In the tomb of sin.
Paap ki kabar mein.
Unable to see.
Apne aap nahi dekh sakte.
Unable to hear.
Sun nahi sakte hain.
Unable to come.
Wo aa nahi sakte.
Unable to repent.
Aur pashtaap nahi kar sakte.
Jesus come.
Yeshu Masih aate hain.
He says repent.
Aur wo kehte hain pashtaap karo.
Believe.
Vishwas karo.
Come.
Aao.
Why do some men come?
Kyun karke kuch log aate hain?
Because of secret work.
Kyunki parmeshwar ke us gupt kaam ki wajah se. Parmeshwar ki samarth.
And a dead man.
Aur ek mara hua aadmi.
Is awakened.
जाग जाता है.
God gives him two gifts.
और फिर परमेश्वर उसको दो दान देता है.
What are the gifts?
कौन से दान है वो?
Repentance.
पश्चाताप.
And faith.
और विश्वास.
And the first thing a dead man does.
और सबसे पहली चीज एक जो मरा हुआ आदमी करता है.
He awakens.
वो जगता है.
And he comes to Jesus.
और वो यीशु के पास आता है.
When the people were standing outside of the tomb.
जब लोग कब्र के बाहर खड़े हुए थे.
What's the first thing they saw?
सबसे पहली चीज उन्होंने देखी
क्या
देखी?
They saw Lazarus coming to Jesus.
उन्होंने देखा कि लाजर यीशु के पास आ रहा है.
What did they not see?
उन्होंने क्या नहीं देखा?
They didn't see the secret work.
उन्होंने उस गुप्त कार्य को नहीं देखा.
It's invisible.
वो अदृश्य है.
It's secret.
वो गुप्त है.
It's supernatural.
वो अप्राकृतिक है.
They didn't see that.
उन्होंने नहीं देखा उस बात को.
When you see men repent.
जब आप लोगों को पश्चाताप करते देखते हैं.
When you see men believe.
जब आप लोगों को विश्वास करते देखते हैं.
When you see men come.
जब आप लोगों को आते हुए देखते हैं.
There's something you don't see.
कुछ ऐसी चीज है जो आप नहीं देखते हैं.
You don't see the secret work.
आप उनके अंदर जो गुप्त कार्य हो रहा है उसको नहीं देखते हैं आप.
Do you understand what I'm saying?
क्या आप समझ रहे हैं उस काम को जो हम बात जो मैं कह रहा हूं आपसे?
What is the relationship of regeneration and repentance and faith?
और पश्चाताप और नए जन्म और विश्वास का क्या संबंध है?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
One is the cause. The cause. The other is the result.
एक चीज कारण है और दूसरा चीज परिणाम है.
One is the root. The other is the fruit.
एक जड़ है और दूसरा फल है.
One is an act of God.
एक परमेश्वर का कार्य है.
The other is the response of man.
और दूसरा है मनुष्य का प्रति उत्तर.
In regeneration, man is passive.
जो नया जन्म है उसमें मनुष्य निष्क्रिय होता है, कुछ नहीं करता नए जन्म में.
In conversion, man is active.
और हृदय परिवर्तन में मनुष्य सक्रिय होता है.
What is the power of salvation?
उद्धार की सामर्थ क्या है?
The new birth.
नया जन्म.
Most preachers in India.
भारत में ज्यादातर प्रचारक लोग.
Most preachers in China.
चीन में ज्यादातर प्रचारक.
Most preachers everywhere.
सब जगह प्रचारक लोग ज्यादातर.
Because they don't understand the nature of man.
क्योंकि वो मनुष्य के स्वभाव को नहीं समझते हैं.
Their theology is backward.
उनका जो धर्म विज्ञान है वो उल्टा पुल्टा.
What do they say?
वो क्या कहते हैं?
You repent.
तुम पश्चाताप करो.
You believe.
तुम विश्वास करो.
Then you're born again.
तब तुम्हारा नया जन्म होता है.
What did Jesus say?
यीशु मसीह क्या कह रहे हैं?
You must be born again.
सबसे पहले तुम्हारा नया जन्म होना है.
Then you repent.
तब तुम पश्चाताप करोगे.
Then you believe.
फिर तुम विश्वास करोगे.
There are two callings in the Bible.
बाइबल में दो तरह की बुलाहट है.
There's the general call.
एक है साधारण बुलाहट.
And there is the effectual call.
और एक है प्रभावशाली बुलाहट.
What is the general call?
जो साधारण बुलाहट है वो
क्या है? That's the voice of the preacher.
वो
एक प्रचारक की
बुलाहिंग ऑफ द गॉस्पल
सुसमाचार के प्रचार में
he puts it in the ear of men.
वो लोगों के कानों में डालता है
men can reject the general call.
और जो मनुष्य है इस साधारण बुलाहट का तिरस्कार कर सकता है
But there's another call.
लेकिन दूसरी बुलाहट
a secret call.
वो एक गुप्त बुलाहट
a powerful call.
वो सामर्थ्यशाली बुलाहट
Not just the voice of man.
न केवल मनुष्य की आवाज नहीं प्रचार की आवाज
But the voice of God.
लेकिन परमेश्वर की आवाज
Not in the man's ear.
मनुष्य के कानों में नहीं
But in the man's heart.
लेकिन मनुष्य के हृदय में
You tell them to come.
हम बोलते हैं उनको आने
They don't come.
वो नहीं आते
You tell them to repent.
आप उनसे कहते पश्चाताप
करो They don't repent.
वो पश्चाताप नहीं
You
करते
tell them to believe.
आप उनसे कहते विश्वास करो
They don't believe.
वो नहीं विश्वास करते
But when God speaks.
लेकिन जब परमेश्वर कहता
When he says come.
जब वो कहता है
When he says repent.
जब वो कहता है पश्चाताप करो
When he says believe.
जब वो कहता है विश्वास करो
They must come.
उनको आना है
Lazarus is in the tomb.
लाजर कब्र में है
He's given new life.
उसने एक नए जीवन दिया है
What does he say?
वो क्या कहता है उसके बाद
Well, I'm not going out.
वो ये नहीं कहता कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा
He must come.
जब जब लाजर ने आवाज सुनी वो ये नहीं कहता कि मैं बाहर
नहीं आऊंगा Christ has called him.
वो आएगा वो निश्चय बाहर आएगा क्योंकि मसीह ने उसे बुलाया है
Giving him life.
उसको नया जीवन दिया है
Giving him the gift of faith.
उसको विश्वास का दान दिया है
Giving him the gift of repentance.
उसको पश्चाताप का दान दिया है
Listen to me, my friends.
मेरे भाइयों मेरी बात को सुनिए
When you're preaching to lost men,
जब आप खोए हुए लोगों से प्रचार कर रहे हैं
you're preaching to dead men.
तब आप मरे हुए लोगों को प्रचार कर रहे हैं
Go to the graveyard.
आप कब्रिस्तान को जाइए
Open your Bible.
अपनी बाइबल खोलिए
लिफ्ट अप योर वॉइस
अपनी आवाज को ऊंचा करिए
टेल देम टू कम
उनसे कहिए कि तुम आओ
विल दे कम
क्या वो लोग आएंगे
You can't make them come.
आप उनको नहीं ला सकते हैं बाहर
You cannot give them life.
आप उनको जीवन नहीं दे सकते
You cannot make them born again.
आप उनको नया जन्म नहीं दे सकते
What is your responsibility?
आपकी जिम्मेदारी क्या है
Preach the gospel.
सुसमाचार का प्रचार कीजिए
Give the general call.
और साधारण जो बुलाहट
है Command them to come.
उनको आज्ञा दीजिए
Invite them to come.
और उनको चेतावनी कि वो आएं
Beg them to come.
उनसे विनती करिए कि वो आएं
Tell them this.
उनसे ये कहिए
If you come.
अगर तुम आओगे
If you repent.
अगर तुम पश्चाताप करोगे
If you believe.
अगर तुम विश्वास
करोगे, right now,
अभी,
he will save you.
वो तुमको बचाएगा.
Come,
इसलिए आओ.
You give the voice.
तुम आप उनको आवाज दीजिए.
But only God can give the life.
लेकिन केवल परमेश्वर आवाज दे सकता है, जीवन दे सकता है.
Ezekiel.
Ezekiel.
Standing at the valley of dry bones. You remember that story?
आपको मालूम है ना वो सूखी हड्डियों से भरी हुई जो घाटी है उसमें खड़ा हुआ वो कहानी मालूम है आपको?
What does God ask you?
और परमेश्वर ने उसे क्या कहा?
Ezekiel, can these bones live?
Ezekiel, क्या ये जो हड्डियां हैं इनमें जीवन आ सकता है?
What did he say?
उसने क्या कहा Ezekiel?
Lord, only you know.
प्रभु केवल आप ही जानते हैं.
What God tell him to do?
परमेश्वर ने क्या कहा उसे करने के लिए?
Speak to the bones.
इन हड्डियों से बात करो.
You hear that?
आप समझ रहे हैं इस बात को?
That's the preacher's responsibility.
ये प्रचारक की जिम्मेदारी है.
Speak to the bone.
ये जो हड्डियां हैं उनसे बात कीजिए आप.
Speak to the bone.
हड्डियों से बात कीजिए.
And tell them to come.
और उनसे कहिए कि तुम
Tell them to live.
उनसे कहिए कि तुम
जियो. Tell them to repent.
और उनसे कहिए पश्चाताप करो.
Tell them to believe.
और उनसे कहिए कि विश्वास करें.
You speak to the bone.
आप हड्डियों से बात कीजिए.
That's your responsibility.
ये आपकी जिम्मेदारी है.
You tell them if they come.
वो आप उनसे कहिए कि अगर वो आएंगे.
He will save you.
वो उनको बचाएगा.
Speak to the bone.
बात कीजिए
But only God can give the life.
लेकिन केवल परमेश्वर ही जीवन दे सकता है
Do you understand what I'm saying?
आप समझ रहे हैं इस बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे
I didn't ask you if you agreed with it.
मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे सहमत है कि नहीं मैं ये नहीं मानूंगा
I asked you, do you understand what I'm saying?
मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं
Study your Bible.
अपनी बाइबल का अध्ययन कीजिए आप
If you don't understand the doctrine of man,
यदि आप मनुष्य के सिद्धांत को नहीं समझेंगे
you cannot understand the doctrine of salvation.
तो आप उद्धार के सिद्धांत को नहीं समझ सकते
How can dead men repent and believe?
एक मृतक व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है और पश्चाताप कर सकता है
This is our answer.
ये हमारा उत्तर है
By the new birth.
नए जन्म के द्वारा
And if God doesn't give them life,
अगर परमेश्वर उनको जीवन नहीं देगा
they will never come.
तो वो कभी नहीं आएंगे
If God doesn't give them life,
अगर परमेश्वर उनको जीवन नहीं देगा
they will never repent.
तो वो कभी पश्चाताप नहीं करेंगे
If God doesn't give them life,
अगर परमेश्वर उनको जीवन नहीं देगा
they will never believe.
वो कभी विश्वास नहीं करेंगे
Second question.
दूसरा प्रश्न
Why do some men? Our first question was this.
पहला प्रश्न ये था.
How can a dead man believe?
कैसे करके एक मृतक व्यक्ति विश्वास कर सकता है?
By the power of the new birth.
नए जन्म के सामर्थ्य के द्वारा.
Second question.
दूसरा प्रश्न है.
Why do some men believe and some men don't?
क्यों करके कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं?
Look in the book of Acts.
पेतो के काम की पुस्तक में देखिए.
And with this we will finish.
और इसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे.
You must understand this.
आपको इस बात को समझना है.
Chapter 13.
13 अध्याय.
Paul is preaching.
पौलुस प्रचार कर रहा है.
Verse 44.
44 पद.
I want you to look at this verse with your own eyes.
मैं चाहता हूं कि आप अपने आंखों से खुद देखिए. 13 पद उसका 44 पद अपने आप स्वयं देखिए. काम 13:44 पद.
The next Sabbath, the whole city gathered to hear the word of God.
अगले सबत को सारा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा.
And when the Jews saw the crowd, they were filled with jealousy, began to argue.
परंतु जब यहूदियों ने भीड़ को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए और निंदा करने लगे.
Verse 46.
46 पद.
Paul spoke boldly to them. It's necessary to speak the word of God to you first.
पौलुस ने बार-बार निंदापूर्वक कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए.
But you rejected, judge yourselves unworthy of eternal life.
परंतु तुमने इसलिए कि उसकी अवहेलना की अपने आप को नन जीवन के अयोग्य ठहराते हो.
We're turning to the Gentiles.
और अब हम गैर यहूदियों की ओर फिरते हैं.
Verse 48.
48 पद.
Look at the verse.
इस पद को देखिए.
And when the Gentiles heard this,
और जब गैर यहूदियों ने ये सुना,
they began to rejoice and glorify the word of the Lord.
तो वे आनंदित होने लगे, परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करने लगे.
Look at the last phrase.
और आखिरी वाक्यांश देखिए.
What does it say?
क्या कहता है उसमें?
Is that a good translation? Look at the verse carefully.
उसको ध्यान से देखिए.
Why did they believe?
क्यों इन गैर यहूदियों ने विश्वास किया?
One is the cause, one is the result.
एक कारण है, दूसरा परिणाम है.
How many people read this verse like this?
और कितने लोग हैं जो इस पद को इस तरह से पढ़ते हैं?
Those who believe were then appointed to eternal life.
जिन लोगों ने पहले विश्वास किया फिर उसके बाद अनंत जीवन के लिए वो लोग ठहराए गए.
But if you read the verse right,
लेकिन अगर आप उस बात को सही तरीके से पढ़ेंगे,
what does it say?
वो क्या कहता है?
What comes first?
पहले क्या आता है? हाँ? ठहराए जाना.
This is not what some American preachers say.
और ऐसा कई अमरीकी प्रचारक लोग ऐसा नहीं कह रहे.
This is what Luke is saying.
ये लूका कह रहा है.
This is his interpretation.
ये उसकी व्याख्या है, उसका समझना ऐसा है.
Why do some men believe?
क्यों कुछ लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि ठहराए गए.
Because they are ordained to eternal life.
क्योंकि अनंत जीवन के लिए वो लोग ठहराए गए.
Jesus said this.
यीशु मसीह ने ये कहा.
John 10.
यूहन्ना 10.
My sheep hear my voice.
मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं.
And I know them.
और मैं उनको जानता हूँ.
And I give them life.
और मैं उनको जीवन देता हूँ.
And they will follow me.
और वो मेरे पीछे आएंगे.
And they will never perish.
और वो लोग कभी उनका विनाश
नहीं होगा. What did he say the Pharisees?
यीशु मसीह ने फरीसियों से क्या कहा?
You do not believe.
तुम विश्वास नहीं करते.
Why do you not believe?
तुम क्यों नहीं विश्वास करते?
Because you are not my sheep.
क्योंकि तुम मेरी भेड़ नहीं हो.
I give my life for the sheep.
मैं अपना जीवन अपनी भेड़ों के लिए देता हूँ.
And when you preach the gospel,
और जब आप उसमें का प्रचार करते हैं,
you preach to a group of people,
और आप एक लोगों के समूह को प्रचार कर रहे हैं,
they're all listening,
वे सब लोग सुन रहे हैं,
they hear your voice,
वो आपके आवाज़ को सुनते हैं,
but some,
लेकिन कुछ
will believe,
विश्वास करेंगे.
Why?
क्यों?
Because when you're preaching.
क्योंकि जब आप प्रचार कर रहे हैं,
You're calling them to come.
आप उनको बुला रहे हैं आने के लिए.
They hear a second voice.
वो एक दूसरी आवाज को सुनते हैं.
They hear the voice of God.
वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं.
And that voice says, come.
और वो आवाज कहती है, आओ.
And if God says, come,
और अगर जब परमेश्वर कहता है,
they must come.
तब उनको निश्चय ही आना
है. You tell them to come,
लेकिन आप जब कहते हैं,
they don't come.
वो नहीं आएंगे.
When you preach the gospel,
जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं,
God does this.
परमेश्वर ऐसा करता है.
Some are raised from the dead.
और कुछ लोग हैं जो मृतकों में से जिला दिए जाते हैं.
And they repent.
और वो लोग पश्चाताप करते हैं.
They believe.
और विश्वास करते हैं.
Why?
क्यों?
Because from all eternity.
क्योंकि अनंत काल से
the father gave them to the son
परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को उन्हें दे दिया था
because the son willingly came to die for them
क्योंकि पिता अपनी इच्छा से स्वेच्छा से उनके लिए मरने के लिए आ गया
Jesus said of all the father has given me I lose none of them
यीशु मसीह ने कहा जिनको पिता ने मुझे दिया है मैं उनको नहीं खोऊंगा
and the spirit comes and gives them life
और पवित्र आत्मा आता है और उनको नया जीवन देता है
That's the power of salvation.
ये है उद्धार का सामर्थ्य.
42 years ago.
42 साल पहले.
That young man was sitting at his desk.
वो जवान व्यक्ति अपने मेज पे बैठा हुआ था.
His eyes were blinded.
उसकी आंखें अंधी थीं.
But he read the word.
लेकिन उसने वचन को पढ़ा.
God gave him life.
और परमेश्वर ने उसे जीवन दिया.
My friend, that's the power of God.
मेरे मित्रों, ये है परमेश्वर की सामर्थ्य.
That's the gospel of Christ.
ये है मसीह का सुसमाचार.
Salvation comes from God.
उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है.
Now, why are you here?
आप क्यों हैं आज यहाँ पे?
Because sometime in your life.
क्योंकि आपके जीवन में किसी समय.
You may not know exactly when.
हो सकता है आपको याद नहीं है बिल्कुल निश्चित समय की बात है ये.
Because it's a hidden work.
क्योंकि ये एक गुप्त कार्य
है. It's a secret work.
ये एक छिपा हुआ कार्य है.
It's something that's done to you.
ये आपको किया जाता है.
It's not something you do.
ये ऐसा कार्य नहीं जो आप करते हैं.
But if you're here today and you're a true Christian.
लेकिन अगर आप आज यहाँ पे हैं और आप सच्चे मसीही हैं.
At some point in your life.
अपने जीवन में किसी क्षण.
Life.
जीवन.
Came to your heart.
जीवन आपके आपके हृदय में आ गया.
That's the power of salvation.
ये है उद्धार का सामर्थ्य.
What is your responsibility?
आपकी जिम्मेदारी क्या है?
Speak to the bones.
हड्डियों से वार्तालाप कीजिए.
What is God's responsibility?
परमेश्वर की जिम्मेदारी क्या है?
He gives them life.
वो उनको जीवन देता है.
Well, let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.